चिंतामृत कार्यक्रम में तीसरा अध्याय कर्मयोग की व्याख्या, अर्जुन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजित, कि वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण एक जीव पाप करने के लिए लाचार हो जाता है। अर्जुन देखिए, एक ऐसी संस्कृति की बात कर रहे हैं जहां पाप करने के लिए कोई लाचार हो रहा है। अर्थात यहां अर्जुन पाप की सराहना नहीं कर रहे अपितु एक लाचारी व्यक्त कर रहे हैं किसी जीव की, उनके स्वयं की नहीं, किसी बद्ध जीव की, और वो बद्ध जीव हम लोग सब हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन के इस प्रश्न का जवाब देते हुए काम वासना इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि व्यक्ति पाप करने के लिए लाचार होता है जब वो काम वासना के वशीभूत होता है। और ये एक ऐसा शत्रु है जिसको जीव ने मित्र बनाया है और उसे शत्रु के रूप में देख ही नहीं रहा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा विशेष शत्रु है ये काम वासना, कि जीव ने उसको न केवल मित्र बनाया बल्कि उसका भरण पोषण कर रहा है। द कंडीशन्ड लिविंग एंटिटी इज नॉट ओनली कंसिडरिंग लस्ट एज वन्स ओन फ्रेंड बट इट ऑल्सो मेंटेनिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ दिस लस्ट पेरेनियली एटर्नली। तो हमने पिछली बार ये श्लोक लिया था जिसका भाग एक हमने इसकी चर्चा की, क्योंकि इस एक श्लोक में भगवान ने ऐसे महत्वपूर्ण रहस्यमय बातें कही हैं कि जितना हम गहराई में जाएं उतना हम पाते हैं कि एक तो भगवान के वाक्य, भगवान की व्याख्या और ये काम वासना का प्रकोप कितना है। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक, भगवान काम वासना की व्याख्या करते हुए अब इस स्थिति तक पहुंचे हैं कि भगवान ने जो काम वासना के निवास स्थान हैं वो बता दिए हैं, और अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि एक एक कर कैसे इस शत्रु को पहचान कर, इसके निवास स्थानों को पहचान कर, इनके आश्रय स्थलों को पहचान कर आक्रमण करना है। तस्मात्वम इंद्रियाणाद्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीयेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात्वम् इंद्रियाणाद्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीहेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात्वम् इंद्रियाणाद्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीहेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। यहां पर भगवान अर्जुन को भरतर्षभ इस नाम से पुकार रहे हैं कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पहचान लो कि ये कामवासना पाप का प्रतीक है, ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला है, और यदि तुम्हें इस कामवासना के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम इंद्रियाणाद्यो, इंद्रियों को संयम में रखो, क्योंकि वो सबसे पहला निवास स्थान है कामवासना का। अनुवाद इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का, इसीलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। काफी भगवान स्ट्रांगली बोल रहे हैं, दमन करो, वध करो। लॉर्ड कृष्णा इज बीइंग अनकॉम्प्रोमाइजिंग, लॉर्ड कृष्णा इज बीइंग रूथलेस ऑन व्हाट, ऑन हुम, ऑन लस्ट। इस काम वासना के ऊपर भगवान के शब्द बहुत ही तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण शब्द भगवान कह रहे हैं यहां पर। क्यों भगवान कह रहे हैं? क्योंकि काम वासना तीक्ष्ण है, तो जैसा शत्रु वैसा प्रहार, जैसा शत्रु वैसे अस्त्र शस्त्र। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोक से संबंध इंद्रिय आदव शब्दों की व्याख्या, जिसकी व्याख्या हम कर चुके हैं, भरतर्षभ शब्द की व्याख्या, प्रज ही हीनम शब्दों की व्याख्या, पापमानम ज्ञान विज्ञान नाशनम शब्दों की व्याख्या। तो पिछले बुधवार को हमने जो पहले तीन मुद्दे हैं, पहले तीन पॉइंट्स, इन छह पॉइंट्स में से वो लिए थे, और एक शॉर्ट रीकैप पिछले बुधवार का कि पिछले श्लोक से संबंध 40वें श्लोक में भगवान ने काम वासना के तीन प्रकार के निवास स्थान बताए थे, और 41वें श्लोक में, आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं काम शत्रु पर सर्वप्रथम प्रहार की विधि क्या है, और प्रारंभ किया है भगवान ने इंद्रिय आदव, आदि इंद्रिय, इंद्रिय के ऊपर निग्रह सबसे पहले। और भक्ति विनोद ठाकुर इसकी व्याख्या करते हुए, इस प्रथम पंक्ति के दो शब्दों की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान ने तीन निवास स्थानों में से सर्वप्रथम इंद्रिय के ऊपर निग्रह करने के लिए कहा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों में सर्वप्रथम हमारी आंखें, आंखों से शुरुआत होती है काम वासना के साम्राज्य की। और अंग्रेजी का ये एक फ्रेज है जो कि भगवान आज के श्लोक में बताएं, निपिट इन द बर्ड। निपिट इन द बर्ड मीन्स कि पैदा होने से पहले ही उसे काट डालो। जैसे जो किसान होते हैं वो अपनी खेती को बहुत ही खुशहाल यदि रखना चाहते हैं तो उन्हें जो खाद डालना पड़ता है बीजों के साथ, और पानी इत्यादि, सूर्य का प्रकाश, उसके साथ साथ जो अवांछित पौधे होते हैं, अंग्रेजी में उसे कहते हैं वीड्स, तो अवांछित पौधों को, वीड्स को किसान को उतनी ही ध्यान से, उतने ही ध्यान पूर्वक उसको काटते रहना पड़ता है। तो ये भगवान कह रहे हैं, ये जो अंग्रेजी का ये फ्रेज है निपिट इन द बर्ड, कि काम वासना इंद्रिय या आंखों से शुरुआत अपनी करती है या करता है तो वहीं पर काट डालो इसको। हमने कामवासना की तुलना पिछले बुधवार से, पिछले बुधवार एड्स के वायरस से की थी, और इस श्लोक के द्वारा ये समझ में आ रहा है कि भगवान इसकी तुलना एक ऐसे बीमारी से कर रहे हैं कि यदि इसे शुरुआत के स्टेजेस में नहीं कंट्रोल किया जाए, जैसे हम जानते हैं कि कैंसर को यदि शुरुआत के स्टेजेस में कंट्रोल कर लिए तब वो जानलेवा नहीं हो सकता, परंतु यदि कैंसर डिटेक्ट हुआ है बहुत लेटर स्टेज पर तब फिर डॉक्टर भी कह देता है अब हम नहीं कुछ कर सकते। तो काम वासना भी उसी प्रकार से, अगर हम उसको पनपने दें हमारे अंदर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इंद्रिय से लेके मन, फिर बुद्धि, इन सब के ऊपर अपना साम्राज्य जमाने दें, और फिर यदि हम अपेक्षा रखें कि ये सब काम वासना ने हमारे सब इस निवास स्थानों पर अपना साम्राज्य जमा लिया, अपना राज्याभिषेक करवा लिया, उसके बाद फिर हम यदि ये अपेक्षा रखें कि अरे अब मुझे ये परेशान कर रहा है ये मेरा काम वासना, तो अब मुझे इसके ऊपर निग्रह करना, इट माइट बी टू लेट, भगवान कह रहे हैं। तो कैंसर में दो प्रकार के कैंसरस सेल्स होते हैं मेडिकल टर्म में, एक को अंग्रेजी में कहते हैं बिनाइन और एक को कहते हैं मेलिग्नेंट। बिनाइन का अर्थ है कि जानलेवा नहीं है, मेलिग्नेंट का अर्थ है कंट्रोल के बाहर, जानलेवा हो। तो यहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि सबसे पहले इंद्रिय, और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं इंद्रियों में मन, सॉरी आंखें, तो आंखों के ऊपर से वहां से यदि कोई व्यक्ति निग्रह प्रारंभ करता है तो वो इस काम वासना को बिनाइन स्टेज में ही रखता है, मेलिग्नेंट नहीं होने देता। तो ये उदाहरण हमने इसलिए लिया था, और हमने एक और फिजिक्स की एक थियरी है डिटर्मिनिस्टिक केओस थियरी, इसकी चर्चा की थी, जिसके अंदर भी इस थियरी में यही बताया गया है कि कैसे आप किसी वस्तु, किसी प्रक्रिया को शुरुआत के उसकी स्थिति में उसमें बदलाव लाते हो तो अंत की स्थिति में उसके अंदर कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। यह है डिटर्मिनिस्टिक केओस थियरी, हम उसमें फिर से नहीं जाएंगे। और भगवान ने अर्जुन को जो इस नाम से पुकारा भरतर्षभ, अर्थात भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ, और भरतर्षभ इस नाम का यदि हम विच्छेदन करें तो एक और अर्थ निकलता है जो भगवान विशेष रूप से अर्जुन के द्वारा हम सबको बताना चाहते हैं। भ का अर्थ है ज्ञान, रथ का अर्थ है लगे रहना, ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। तो भरत ऋषभ का अर्थ हुआ ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन बड़े बड़े ज्ञानी, विश्वामित्र मुनि, सौबरी मुनि, तपस्वी ज्ञानी हुए, वो काम वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु अर्जुन तुमने प्राप्त कर ली थी जब तुम स्वर्ग गए थे, उर्वशी का प्रलोभन तुम्हारे सामने आया था, अर्जुन तुमने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो, और ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। तो यहां भगवान इनडायरेक्टली संकेत दे रहे हैं कि यदि काम वासना के ऊपर अर्जुन की तरह विजय प्राप्त करनी है तो भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, केवल ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, ये भगवान इनडायरेक्टली बता रहे हैं। हमने कछुए का उदाहरण लिया था, यदा समहरते चायम कूर्मोंगानिव सर्वश इंद्रियस अभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जैसे एक कछुआ वो अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेता है जब खतरा देखता है, तो वैसे ही एक जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है वो जैसे ही खतरा देखता है कि विषय वस्तु मुझे प्रलोभित करने के लिए आ रही है तो वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। और वही कछुआ जब खतरा नहीं तो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान की सेवा में हमको इन इंद्रियों को लगाना है तो हमें इन इंद्रियों को कछुए की तरह बाहर निकालना, मंदिर में बाहर निकालना चाहिए, बाहर जो खतरा होता है तब इंद्रियों को अंदर करना चाहिए। तो अब भाग दो, अब तक रिकैप था पिछले बुधवार का। तो भगवान अब इस श्लोक में ये दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, नियम्य प्रजहि। नियम्य का अर्थ श्रील प्रभुपाद ने अनुवादित किया है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, नियम। जैसे हम साधारण इस शब्द का अर्थ भी जानते होंगे, नियम का अर्थ है संयम। और प्रजहि, प्रजहि का अर्थ है, भगवान कह रहे हैं दमन करो, इसका दमन करो। अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया है कर्ब इट डाउन, दमन करो। जैसे यहां पर नियमों के द्वारा इस पापी काम वासना का दमन करो, ये पूरा अर्थ हुआ नियम्य प्रजहि ह्येनम का। तो हम क्या इससे समझ रहे हैं कि भगवान हमको बताना चाहते हैं कि विशेष रूप से मनुष्य समाज में यदि हमारे जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं या नियम नहीं तो वो मनुष्य कहलाया ही नहीं जाएगा। जब तक कि डिसिप्लिन नहीं तब तक वो मनुष्य ही नहीं कहला जाता। तो मनुष्य कि एक बहुत विशेष परिभाषा भगवान दे रहे हैं। क्या है मनुष्य की एक विशेष परिभाषा? मनुष्य अर्थात जिसके जीवन में अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ डिसिप्लिन। और ऋषभदेव भगवान के एक जो अवतार हुए उन्होंने कहा नायाम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान अरहते विड़भुजाम ये तपो दिव्य, कि ये मनुष्य देह जो हमें प्राप्त हुआ है इस मनुष्य देह में हमें तपस्या करनी है, अनुशासन डिसिप्लिन ऑस्टेरिटी ये सब कुछ करना है कुछ प्राप्त करने के लिए। और हम अब इसके ऊपर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे कि मनुष्य जो हैं वो पशु की तुलना में ज्यादा कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि हमें बनाए उसके लिए गए कष्टान कामान, कष्ट कर कर काम कर रहे हैं, काम पूरा करने के लिए कष्ट कर रहे हैं। काम के दो अर्थ हो सकते, एक है वर्क और काम, यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं लस्ट। तो लस्ट एंड वर्क बोथ, फॉर बोथ मैन इज स्ट्रगलिंग हार्ड कष्टान कामान। तो भगवान कह रहे हैं और हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि क्यों न, जब कष्ट करना ही है, ये न के न प्रकार न कष्ट तो करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, तो क्यों न दिव्य कष्ट करो, क्यों न दिव्य तप करो, है कि नहीं? तो इसलिए अब हम इस विषय के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे कि प्रजहि ह्येनम नियम्य, इसके द्वारा भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे आप नियम अनुशासन डिसिप्लिन तप इन सब के द्वारा शक्ति अर्जित करो। और वो शक्ति से करो क्या, फिर इस काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त करो. एम्पावरमेंट थ्रू ऑस्टेरिटी. ऑस्टेरिटी का अर्थ है तपस्या या डिसिप्लिन. हम देखेंगे हमारे, मैं इसके विषय में रिसर्च कर रहा था थोड़ा, तो श्रील प्रभुपाद और हमारे अन्य आचार्यों का जो निचोड़ है उसमें बताया गया है कि चार प्रकार के अर्थ बताए हैं ऑस्टेरिटी के. बहुत सिग्निफिकेंट है ये चार प्रकार के अर्थ. तपस्या, ऑस्टेरिटी का अर्थ है तपस्या. तो रनन्सिएशन, रनन्सिएशन का अर्थ है वैराग्य. सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का अर्थ है त्याग. डिसिप्लिन, अनुशासन. डिस्कम्फर्ट, देखिए ये भी हमारे मनुष्य जीवन में एक ऐसा पहलू है जिसके बिना चाहे कोई कितना भी पैसा कमा ले, उसके जीवन में कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट रहने ही वाला है. चाहे कोई कितना भी ऐशो आराम का जीवन अपने लिए बटोर ले, इकट्ठा कर ले, फिर भी डिस्कम्फर्ट, जिसको हम कहेंगे कष्ट, तकलीफ. जैसे आप लोग यहां पर पंखों के नीचे कुर्सी पर बैठे हो, और हां यदि मैं पूछूं कि कोई कष्ट हो रहा है, आप लोग ऑनेस्टली अगर जवाब देना चाहो तो कहोगे कुर्सी तो कंफर्टेबल है, मंदिर भी बड़ा सारा है, पंखा भी चल रहे हैं. आप थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे हैं. तो कुछ भी हो सकता है. यहां सामने खड़ा हुआ वो कष्ट दे रहा होगा, बगल में कोई बैठा हुआ वो कष्ट दे रहा होगा कि अरे इसके बगल में क्यों बैठा, ये आगे क्यों बैठ गया, फंस गए भाई आगे बैठ कर. तो कुछ ना कुछ, ये सब कुछ ठीक चल रहा होगा, अचानक पेट में दर्द, सर में दर्द, कुछ तो कोई ना कोई अलग अलग प्रकार. इसलिए हम हर बार अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, कभी ऐसे कभी वैसे. क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि कष्ट होता रहता है, ये बनाए शरीर इस प्रकार से. तो तपस्या के ये चार अर्थ बताए. तपस्या के अंदर ये चार चीजें होना आवश्यक है. तो भगवान कह रहे हैं नियम और प्रजही कि हम मनुष्य इन चार के बिना जी ही नहीं सकते. और यदि कोई इन चार के बिना जीने का प्रयास कर रहा है तो एक तो वो मूर्ख है, अपने आप को भ्रम में डालकर जीने का प्रयास कर रहा है. और यदि वो कर भी ले, कोई ऐसी सुविधा भी अपने लिए इकट्ठा कर ले, तो वो फिर मनुष्य ही नहीं है. सबसे पहले भगवान कह, तो दोनों तरफ से चित भी अपनी पट भी अपनी, भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं कि यदि कोई ऐसा ऐशो आराम का जीवन भी अपने लिए संवार ले तो फिर वो मनुष्य ही नहीं कहलाएगा. और मनुष्य यदि कहलाना चाहे तो फिर चार चीजें तो है ही. तो हम फिर एक एक कर यदि देखें, सबसे पहला प्रश्न कि क्या जब भगवान बोल रहे हैं कि हमें वैराग्य का जीवन जीना है, तो क्या भाई ऐसा वैरागी बनना है? राम राम राम, ये तो भयानक दिख रहा है. तो प्रश्न ये है, इज रेनन्सिएशन अट्रैक्टिव? वैराग्य क्या हमें आकर्षित करता है? स्वयं के लिए नहीं करता होगा, दूसरों में जब देखते हैं तो बड़ा वैराग्य है ना, आकर्षित किया इन्होंने कि इतने हमारे रामदेव बाबा पॉपुलर जो हुए हैं, वो अपने वैराग्य, अपने तप, अपने योग के वजह से है कि नहीं? यहां पर उपस्थित सभी जानते हैं, वाकिफ है इनसे, है ना। एक व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग पहुंचा, वहां पर उसने जब देखा सोम रस और अप्सराएं वगैरह, तो कहता वहां पर इंद्रदेव को बोलता है, रामदेव बाबा के चक्कर में 30 साल लेट हो गया। तो रेनन्सिएशन इज डेफिनेटली अट्रैक्टिव। इट माइट नॉट बी अट्रैक्टिव व्हेन वी हैव टू डू इट। जब हमको वैराग्य करना पड़ता है तो आकर्षित नहीं लगता, लेकिन हाँ दूसरों में जब हम देखते हैं, जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, तो हाँ हम उनकी सराहना करते हैं। तो यहां पर इसके द्वारा हमें यह समझ में आ रहा है, भगवान बता रहे हैं कि जब हमारे जीवन में भी हम वैराग्य को अपनाएंगे स्वेच्छा से, तो वो हमारा एक आभूषण बनेगा। जैसे जब कोई आभूषण पहनता है तो आभूषण पहनने के बाद तुरंत उसको हर बार अपनी सुंदरता दिखती नहीं रहती। आईने के सामने जाए तो दिखता, हाँ कि मैंने भाई एक हार पहना या जो भी आभूषण पहना तो सुंदर दिख रहा हूं। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि एक साधु के लिए ये सब कुछ आभूषण है, तपस्या, वैराग्य, ये सब कुछ आभूषण है। और जो अध्यात्म में उन्नति करना चाहता है उसके लिए ये एक आभूषण है। तो और न केवल एक आभूषण का काम करता है वैराग्य, बल्कि उसके साथ साथ भगवान को आकर्षित करता है। क्योंकि वैराग्य कोई व्यक्ति कर किस लिए रहा है? भगवान को प्रसन्न करने की। हम इस संसार में देखते हैं कि जो भी व्यक्ति यदि कुछ भी स्तर पर वैराग्य कर रहा है, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम के एक महीने पहले बहुत बड़े वैरागी बन जाते हैं, पिक्चर नहीं जाना, कोई पार्टी नहीं जाना, टीवी नहीं देखना, एग्जाम आ रहा है, किया ना वैराग्य, सबसे वैराग्य ले लिया, पिक्चर से वैराग्य, टीवी से वैराग्य, घूमने फिरने से वैराग्य। क्यों? क्योंकि कुछ हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है, और वो जो वस्तु प्राप्त होने वाली है वो आकर्षित है स्टूडेंट के लिए, है ना। विद्यार्थी के लिए वैराग्य आकर्षित नहीं होगा, परंतु वैराग्य के वजह से जो उसे प्राप्त होने वाला डिग्री वो आकर्षित है उसके लिए। फिर यदि ये पूछा जाए, इज सैक्रिफाइस वैल्यूएबल? त्याग, त्याग है कि किसी दूसरे के लिए हम कुछ त्यागें, उसको सैक्रिफाइस कहते हैं। जैसे यज्ञ, उसको फायर सैक्रिफाइस बोलते हैं, कि आप उस यज्ञ कुंड में जो आहुति डालते हो वो किसका प्रतीक है? वो आहुति जो डाल रहे हो वो प्रतीक किसका है? कि मैं अगले व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, या उस अग्नि को जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है, उनकी जिह्वा है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये आहुति मैं इसमें डाल रहा हूं। जैसे जीसस क्राइस्ट, यहां पर आप देख रहे हो कि इन्होंने इतना बड़ा त्याग, क्रूसीफाई इनको किया गया, कि इनको वो क्रॉस के ऊपर कीनों से ठोका गया जिंदा। और किस लिए किया इन्होंने? जो भी इनके अनुयायी थे, बद्ध जीव, वो इनके सैक्रिफाइस से वो सीखें कि ये जो मैसेज देने आए उसका महत्व क्या है, ये उनको करना पड़ा। सो सैक्रिफाइस इज डेफिनेटली वैल्यूएबल। हालांकि ये एक एक पॉइंट ऐसे हैं कि इसमें हम घंटों चर्चा कर सकते हैं, परंतु सारांश में हम समझाना चाहेंगे कि ये एक एक जो तप का अर्थ बताया गया है उसका महत्व क्या है। अगला प्रश्न, इज डिस्कम्फर्ट प्लेजरेबल? जैसे ये शख्स यहां पर बहुत कष्ट में दिख रहे हैं, बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं, इतना बड़ा वजन उठा रखा है, चेहरा देखो लेकिन जो दांत दिखा रहे हैं वो मुस्कुरा नहीं रहे यहां, आपको लग रहा है बत्तीसी जो दिखा रहे हैं तो बहुत आनंद में है, कष्ट में है। तो डिस्कम्फर्ट इज नॉट प्लेजरेबल। जैसे श्रील प्रभुपाद ने जो नियम दिए कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए माला के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में, ऑब्वियसली उठकर, तो ब्रह्म मुहूर्त आजकल तो वो भी बताना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो सुबह उठना, स्नान करना, एक तो सुबह उठना उसके बाद में स्नान भी करना, ये भी आजकल एक डिस्कम्फर्ट हो गया लोगों के, स्नान करना एक डिस्कम्फर्ट हो गया। मैं जब बंबई में प्रचार कर रहा था तो एक विद्यार्थी वो मेरे पास आया और उसने कहा, प्रभु जी मुझे कुछ तो कन्फेस करना है अकेले में आपको। तो उसने जब कहा अकेले में तो मुझे थोड़ा डर गया कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा पाप इसने कर दिया होगा, कि होता है ना चर्च में वो लोग कन्फेस करते हैं अकेले में। तो मैंने पूछा ठीक है सबको जाने दो फिर बाद में बात करते। सब विद्यार्थी चले गए, फिर अकेले हम लोग वो सेमिनार हॉल में थे, तो आया बोला, प्रभु जी मुझे नहाने की इच्छा नहीं होती। तो सोचो ये इसके लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ नहाना, नहाने की इच्छा नहीं होती। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न था, पिछली बार कब नहाए थे? तो उसने कहा पता नहीं 20-25 दिन हो गए होंगे। तो मैं 2 कदम पीछे आ गया। मैंने कहा थोड़ा दूर से बात करते हैं, पता नहीं कितने कीटाणु जीवाणु पनप रहे होंगे। तो देखिए प्रभुपाद ने सारे जो शास्त्र के नियम दिए हैं जो कि स्वाभाविक रूप से हमको पालन करने चाहिए, कई बार इनके अंदर हमको कष्ट लगता है। सो डिस्कम्फर्ट इज नॉट प्लेजरेबल बट द रिजल्ट विच इट गिव्स इज बेनिफिशियल। इट माइट द रिजल्ट ऑल्सो माइट नॉट बी प्लेजरेबल बट इट इज बेनिफिशियल। इज डिसिप्लिन लॉजिकल? क्यों लॉजिकल ये वर्ड यूज किया है यहां पर? क्योंकि यहां पर देखिए आप लोग, ये लोग कितने डिसिप्लिन तरीके से खड़े हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं सैनिक। मुझे याद है 1992 में मैं सिलेक्ट हुआ था रिपब्लिक डे परेड के लिए, जो अपने राजपथ पर दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड होती, 14 किलोमीटर आपको चलना है राइफल लेकर, वो बड़े बड़े बूट पहनकर, एक बूट 1/2 किलो का और राइफल 5 किलो की, उसको लेकर और पैर कंधों के हाइट तक जाना चाहिए, उसी हाइट पे वो हाथ पीछे वाला हाथ उतने ऊपर जाना चाहिए, ऐसे 14 किलोमीटर चलना है, ऐसे नहीं टहलते हुए दिल्ली में, हाँ भाई चलो चांदनी चौक आ गया, चलो नहीं, डिसिप्लिन और सबका हाथ एक साथ ऊपर जाना चाहिए, सबका पैर एक साथ ऊपर जाना चाहिए, एक साथ नीचे जाना चाहिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो कई बार जो हमारा ये लॉजिकल ब्रेन है ये प्रश्न क्या है, इसमें कोई तथ्य है क्या, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, व्हाई डिसिप्लिन? why not just live indisciplined life, which is so convenient. इसलिए indiscipline seems very convenient. तुरंत आप लोगों की नजर कहां गई होगी मुझे पता है. बेचारे इतने जो अच्छे से खड़े हैं, हमारी नजर उसके ऊपर नहीं जाती. एक जो उबासी ले रहा है, मजे ले रहा है खड़े खड़े. सो इनकन्वीनियंस इज ऑलवेज, सॉरी, इनडिसिप्लिन इज ऑलवेज कन्वीनियंट. मुझे याद है कुछ वर्ष पहले एक भागवत सप्ताह के लिए मैं क्रूज पर गया था. वो पानी का जहाज होता है बड़ा, बंबई से मालदीव्स. तो वहां पर बहुत बड़े बड़े ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट और अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज वो थे ऑडियंस में. तो अभी 7-8 दिन उस शिप में ही रहना है. तो मैं वहां पर रोज सुबह योगा किया करता था. तो कुछ लोग वहां पर देखे मुझे योगा करते हुए, तो वो लोग बोले हमें भी सिखाओ. मैंने कहा ठीक है. तो उसमें से कुछ 30-40 लोग रेडी हो गए, रोज अभी 7 दिन हम योगा भी करेंगे. तो फिर एक एक उनको आसन में बता रहा था. तो योग में कई ऐसे ऐसे आसन हैं जिनका नाम भी थोड़ा विचित्र है, पता नहीं उसको मॉडर्न नाम दिया जिससे मैंने सीखे थे, उन्होंने बताया था मुझे. एक आसन है उसका नाम है चक्की चलासन. जैसे चक्की कोई चलाता है, देखो गांवों में वो जो हाथ वाली चक्की, पत्थर वाली. तो अभी असली में तो चक्की नहीं दे सकते सबको चलाने के लिए, तो वो एक्शन करो बैठकर. तो उसमें ये जो पूरा आपकी आपकी कमर है और पूरा जो उसका एक्शन है वो एक आसन है. उससे आपको कितने बेनिफिट मिलते हैं. तो मैं वही सोच रहा था कि देखो स्वाभाविक रूप से यदि गांव में जो औरतें चक्की चलाती हैं वो अपने आप योग कर रही हैं, अलग से करने की जरूरत ही नहीं. और उसमें फायदा एक और क्या है, आटा पिस रहा है. यहां पर तो इतने बड़े बड़े ये सीईओ और ये लोग सब खाली एक्शन कर रहे हैं, कोई चक्की वक्की तो है नहीं, कोई पिस रहे नहीं आटा. तो एक वो चक्की चलासन और एक आसन साइकिल चला आसन, साइकिल को चलाना लेट कर दोनों पैर ऊपर करके जैसे साइकिल को पेडल करते हैं. तो वैसे काफी वो शुरू में एकदम आसान लगता है, लेकिन आप पूरे लेटे हुए दो पैर ऊपर कर साइकिल चलानी, उसको साइकिल आसन बोलते हैं. तो मैंने फिर वो करवाया. मैंने देखा एक शख्स वो ऐसे ही लंबे लेटे हुए, कोई पैर वैर ऊपर किया नहीं, बाकी सब बेचारे सिंसियरली दोनों पैर ऊपर कर साइकिल चला रहे हैं, ये पूरा लंबा लेटा हुआ कुछ नहीं कर रहा. मैंने पूछा क्यों भाई, क्या हुआ? तो उसने कहा प्रभु जी मेरी साइकिल ढलान में. अब क्या बोलूं इसको मैं. मैंने कहा ठीक है भाई, ढलान से उतरने के बाद चलाना शुरू करना. तो पॉइंट ये है कि इनडिसिप्लिन जो है वो हर समय हमको बहुत कन्वीनियंस प्रस्तुत कर दे कि हाँ चलेगा चलेगा, अरे क्या जाने दो चलेगा. ये सब जो वर्ड्स है ना कि उसको बोलते हैं चलेगा राम, कि सब कुछ चलेगा. तो वो है इनडिसिप्लिन. अब एक जो भौतिकतावादी मनुष्य है जो कि कोई तप नहीं करना चाहता, कोई वैराग्य, कोई सैक्रिफाइस, कोई डिस्कम्फर्ट डिसिप्लिन नहीं पालन करना चाहता, तो उसका 3-point प्रोग्राम क्या रहता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन टुडे, हेवनली लाइफ टुमारो, लिबरेशन व्हेन आई एम फेड अप विद बोथ. अभी इंद्रिय भोग मिलता रहे मुझे, और इंद्रिय भोग अभी इस भौतिक संसार में इस पृथ्वी पर जितना इंद्रिय भोग है वो मैं भोग लूं, उसके पश्चात खैर मरना तो है ही, वो तो अटल सत्य है, मरने के बाद फिर स्वर्ग। इसलिए लोग ऐसे ही बोल भी देते हैं, बेचारे का स्वर्गवास हो गया, पता नहीं कर्म ऐसे किए स्वर्ग गया कि कहां गया वो भी मालूम नहीं, लेकिन बोल देते हैं स्वर्गवास हुआ है। तो हेवनली लाइफ टुमारो, और वहां पर भी कुछ मजा नहीं आया तो फिर मुक्ति जो होते हैं ये योगी वगैरह, फिर वो हमको मुक्ति चाहिए, इन दोनों के परे जाना है, इंद्रिय भोग और स्वर्गवास के परे मुक्ति। तो ये 3 पॉइंट प्रोग्राम एक मटेरियलिस्ट का। अच्छा, ये चित्र जो आपको हम दिखाए, यहां पर मरम्मत चल रही है सड़क की, रोड रिपेयर। तो ये किस्सा हुआ श्रील प्रभुपाद के साथ। प्रभुपाद एक कार्यक्रम के लिए गाड़ी में बैठे जा रहे थे, तो गाड़ी रुकी, सामने सड़क की मरम्मत चल रही थी, ट्रैफिक हुआ था वहां पर। तो वहां पर एक रोड साइन लिखा हुआ था, प्रभुपाद ने उस रोड साइन के ऊपर कमेंट किया। रोड साइन ये था, टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। कभी आपने रोड रिपेयर साइंस अगर पढ़े होंगे, तो एक मैंने यहां पर नासिक में एक बार, अब ये जो ब्रिज बना है बड़ा फ्लाईओवर, तो वहां पर एक बहुत ही कॉमन है, गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। अब वो रोड साइन ऐसा लिखा हुआ था कि गो और स्लो के बीच में बहुत बड़ा गैप था, तो उसका अर्थ बदल गया पूरा, गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस, जो अक्सर होता है भारत में कि जाओ इनका तो धीरे धीरे काम चलता रहेगा। तो प्रभुपाद ने जब ये रोड रिपेयर साइन देखा, टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस, तो प्रभुपाद ने इसको एक आध्यात्मिक अर्थ दिया कि हां, भौतिक संसार में एक भौतिकतावादी मनुष्य, उसका प्रोग्राम यही है कि अभी कष्ट करूं ताकि आगे चलकर कन्वीनियंस मिले। हां ठीक है, ये सिद्धांत हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, यही सिद्धांत हमारे शास्त्रों में बताया गया। प्रभुपाद ने उसके विषय में भी कहा कि एक जो साधक है, एक जो अध्यात्म में प्रगति करना चाहता है, वो भी इसी सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन नियम्य प्रजहि हेनम का अर्थ क्या है, टेम्पररी इनकन्वीनियंस होगा तुमको इस काम वासना पर विजय प्राप्त करते हुए, इंद्रियाणाद्य हो कि शुरू में ही इस इंद्रियों को निग्रह करने में, बट इट इज फॉर फर्दर कन्वीनियंस। तो ये श्लोक जो हमने अभी कहा था, ये श्लोक, ये जो सिद्धांत है, ऋषभ देव उस सिद्धांत को श्लोक में कह रहे, नायाम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्धेत यस्मात ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। लॉर्ड ऋषभ देव टोल्ड हिज सन्स, माय डियर बॉयज, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance. So, yahan par wo keh rahe hain ki bekar phaltu ka kasht mat karo, karo kasht, lekin penance. Engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness, which continues forever. Continues forever matlab permanent convenience. Tapa means temporary inconvenience. So, yahan par tapo divyam. तो तप, दिव्य तप करने से क्या प्राप्त होगा, शुद्धियत, प्यूरिफाइड लाइफ, ब्रह्म सौख्य, ब्रह्म सुख प्राप्त होगा और अनंतम, अनंत काल। तो ये जो प्रभुपाद ने रोड साइन देखा, मैं इसके कनेक्शन में ये श्लोक ले आऊं कि ऋषभदेव ने जो श्लोक कहा, टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। तो ध्रुव महाराज ने दिव्य तप किया गुरु के निर्देशन में, वो भी प्रामाणिक गुरु नारद मुनि के निर्देशन में, मधुवन में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री वासुदेव का महामंत्र इसका जप करते हुए और जो विधियां बताई थी वैसा तप करते हुए 6 महीने में ध्रुव महाराज ने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। तो ध्रुव महाराज ने जो शारीरिक रूप से जो तप किया इस आसन में, ध्रुव महाराज इसको कहते हैं योग में वृक्षासन, वृक्षासन में ध्रुव महाराज खड़े रहे और 6 महीने उन्होंने जो तपस्या की बिना खाए पिए सोए। लेकिन क्योंकि वो प्रामाणिक थी इसलिए उसको दिव्य तप कहा। इसके विपरीत हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ने भी बहुत ही कठोर तप किया, परंतु हिरण्यकशिपु का तप दिव्य तप नहीं कहलाया गया, उसको कहते हैं आसुरी तप। और हिरण्यकशिपु ने ध्रुव महाराज से ज्यादा समय तक, यहां पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को आना पड़ा मजबूरन, क्योंकि हिरण्यकशिपु के तप के वजह से पूरा जो ब्रह्मांड है सृष्टि त्रस्त हो रही थी। और हिरण्यकशिपु ने ऐसा तप किया, अपने पैरों के अंगूठों के ऊपर खड़ा होकर, दोनों हाथ ऊपर कर जिसको ताड़ासन बोलते हैं, उस आसन में वो 100 स्वर्गीय वर्ष खड़ा था बिना खाए पिए सोए। स्वर्गीय वर्ष हमारे पार्थिव वर्ष नहीं, अर्थली इयर्स नहीं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि उसका पूरे शरीर को चींटियों ने खा लिया था और उसने अपनी जान अपने हड्डियों में रख रही थी। तो ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दिया कि ये है कहां हिरण्यकशिपु, क्योंकि उसके पूरे शरीर के ऊपर चींटियों ने अपना वो घर बना लिया था और उसके अंदर पूरा कंकाल हो गया था वो। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था कि मैं अमर बनूं, क्यों, ताकि मैं इंद्रिय भोग में बिना रुकावट, सो टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये था हिरण्यकशिपु का प्लान। और उसका नाम भी यही था हिरण्यकशिपु। हिरण्य का अर्थ है सोना या पैसा, कशिपु का अर्थ है सेक्स लाइफ। तो ये हिरण्यकशिपु का प्लान था कि पैसे और काम वासना, और उसके लिए इतना बड़ा तप उसने किया। तो अभी हमको लग रहा होगा बाप रे आसुरी तप, अब आपको हम कलयुग के आसुरी तप दिखाएंगे। जो पता नहीं किसके लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, अब ये फैशन है। अब सोचिए कि कोई इसको पता नहीं जूते बोलोगे कि क्या बोलोगे, कि कोई व्यक्ति कैसे चल सकता है, कितना कष्ट होता होगा चलने में। लेकिन नहीं, इसमें हम फैशनेबल दिख रहे हैं तो कष्ट उठा रहे हैं। तो ये हम कह रहे थे कि लोग कष्ट के बिना जी नहीं सकते, चाहे आप भगवान के लिए कष्ट करो, वो नहीं तो फिर ये सब तो करना पड़ेगा। अब ये देखिए कि अब इसको आप क्या कहोगे कि, और ये सारे जो मार्केट में बिक रहे हैं इन सब के रेट्स, ये सब हजारों लाखों रुपए में बिक रहे हैं। अब सोचो एक आप कारपेंटर के पास जाओ, ऐसे ही कील दे देगा आपको, चेन में डाल के पहन लो, फुगड़ में भी दे देगा, ले जावे दो। लेकिन इसको फैशन के रूप में, और इसको मुझे पता नहीं कि इसको पहन के कोई कैसे चल सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा है ये व्यक्ति कि किचन के अंदर चाकू रखने की जगह नहीं लगता है, कि अपने नाक को स्टैंड बना लिया इसने। तो ये सब हैं कलयुग के उदाहरण आसुरी तप के। कई बार जरूरत है कलयुग के लोगों के जीप पर जिप लगाने की। तो आप देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे ख्याल से अगर हिरण्यकश्यपु भी कलयुग में, तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, भाई ऐसे ऐसे तब तो हमने भी सोचे नहीं थे। तो अब ध्रुव महाराज और हिरण्यकश्यपु, इन दोनों के तप का परिणाम देखें, कैसे समझ में आएगा कि दिव्य तप और आसुरी तप में अंतर क्या है। परिणाम, दोनों का परिणाम देखिए। तो ध्रुव महाराज ने जो तप किया, 6 महीने में भगवान प्रकट हुए, भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया, ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दिया, कृष्ण भक्ति दी, और हिरण्यकश्यपु के तप का परिणाम, भगवान आए उसके लिए भी आए, हिरण्यकश्यपु के लिए भी भगवान आए, परंतु एक बहुत ही भयानक रूप में, और जो रिजल्ट दिया हिरण्यकश्यपु को बहुत ही भयावह तरीके से चीरफाड़ करते हुए। तो ये रिजल्ट रहा हिरण्यकश्यपु के आसुरी तप का और ध्रुव महाराज के दिव्य तप का। तो ये ऋषभदेव कह रहे हैं कि केवल तप में मत लगे रहो, आसुरी तप में मत लगे रहो, दिव्य तप करो, ऐसा तप जो कि तुम्हें दिव्यता तक पहुंचाए, वो तप करो। तो भगवत गीता में अब हम लोग सोच रहे होंगे, भाई ध्रुव महाराज जैसी तपस्या, बाप रे, नहीं नहीं बहुत कठोर तपस्या बता दी, उसको दिव्य तप बोलते हैं। भगवत गीता में भगवान 3 लेवल्स बताए हैं तप, ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। भगवान कह रहे हैं कि अगर हम ये 3 प्रकार के तप भी कर लें तो काफी हैं, हम दिव्य तप या दिव्य तपस्वी की श्रेणी में आ सकते हैं। तो एक एक इसका श्लोक हम लेकर समझेंगे कि भगवान ने जो शरीर के स्तर पर तप है उसके विषय में कहा है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी कंसिस्ट इन वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। केवल भगवान की आराधना करना ये शरीर के लिए एक तप है अपने आप। The Brahmanas, the spiritual master and superiors like the father and mother and in cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence. कलयुग में देखो एक भी लोग आजकल पालन नहीं करने के लिए प्रेरित होते, कि शुद्धता अंदर की बाहर की, माता पिता की सेवा, अहिंसा, भगवान की भक्ति, गुरु इत्यादि, simplicity, केवल ये देखिए, ये बहुत हमारे लिए भगवान ने ये सब कुछ जो दिया है हमारी भलाई के लिए दिया है। जैसे नहाना, नहाने से हम ही शुद्ध होने वाले हैं। तो भगवान ने ये जो ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी दे दी है कि क्लीनलीनेस, नहाओ, एक सिंपल जीवन जियो, उसमें हमारा खर्चा बचेगा, हमारा ही फायदा होने वाला है। तो ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से हमको मदद करने के लिए हैं, लेकिन हम इसको तप मान लेते। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, अगर तुम तप मान रहे हो तो मैं कहता हूं ये दिव्य तप हो गया, मैं उस तप के सामने दिव्य लगा देता हूं, कि अगर तुम इतना मेरे लिए कर लोगे या एक मेरे नियमों को जो मैं दे रहा हूं उसका पालन करते हुए करोगे तो तुम दिव्य तपस्वी बन जाओगे। ऑस्टेरिटी ऑफ द स्पीच, इसमें ये प्रसिद्ध श्लोक है 7वें अध्याय का, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वान्मयम तप उच्यते। बहुत इंटरेस्टिंगली भगवान कह रहे हैं ऑस्टेरिटी ऑफ द स्पीच कंसिस्ट इन स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रूथफुल प्लीजिंग बेनिफिशियल एंड नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स एंड ऑल्सो इन रेगुलरली रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर को लास्ट में बोला है भगवान ने. उसके पहले भगवान ने कहा है कि कलयुग में सबसे पहले एक सभ्य भाषा बोलिए. सभ्य भाषा बोलने का अर्थ नहीं कि आप झूठ बोलिए. भगवान ने सब पूरा इसका स्पेक्ट्रम ले लिया. एक तो सत्यम, सत्य होने चाहिए. जो आप भाषा बोल रहे हो वो सत्य भाषा होनी चाहिए. और फिर प्लीजिंग. तो प्लीजिंग यहां पर भगवान कह रहे हैं कि प्रिय. सत्य भी बोलो परंतु वो सत्य प्रिय होना चाहिए. अनुद्वेग, नॉन एजिटेटिंग. देखिए कई बार हम सत्य बोलते हैं परंतु इतना एजिटेट करके बोलते हैं उस सत्य को, इतना अप्रिय कर उसको प्रस्तुत करते हैं कि अगला व्यक्ति वो बोले मेरे को तो कभी सत्य सुनना ही नहीं और बोलना भी नहीं. अगर सत्य इतना अप्रिय और उद्वेग करने वाला. एक बार एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं. प्रामाणिकता से उसने प्रपोज किया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं. तो लड़की कहती है ये तो ओल्ड स्टाइल है, थोड़ा कुछ नए स्टाइल में कुछ बोलो. तो अब देखो यही बात को जो उसने प्रपोज किया है उसको वो सत्य बात को कैसे सुनाता है. कहता ठीक है नए स्टाइल में बोलो. तो कहता है कि तू हमारे बेटे को मेरी चिता पर आग लगवाना पसंद करेगी. तो उसमें सब कुछ आ गया, शादी हो जाएगी, बेटा हो जाएगा, जब मैं मरूंगा तो मेरी चिता पर बेटा ही तो आग लगाएगा, तो पसंद करेगी वो. ले अब ये ले सुन ले अब. तो इसको कहते हैं सत्य बोला लेकिन उद्वेग कर अप्रिय. तो भगवान कह रहे हैं अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम. और वो हित करने वाला होना चाहिए. अभी बहुत से हैं जो एकदम मधुर वाणी बोल रहे हैं, सत्य भी बोल रहे हैं, सुनने में भी एकदम ऐसे लग रहा है कि मिश्री घोल घोल के अंदर कानों में डाल रहे हैं, बट वो हमारा हित कर रहे हैं कि नहीं. प्रश्न है कि उससे हमारा हित हो रहा है क्या. तो हितम वो भी होना चाहिए. और फिर भगवान कह रहे हैं कि स्वाध्याय अभ्यसनम, कि भगवान ने जो ग्रंथ दिए हैं उन ग्रंथों को पढ़कर बोलना, इससे बड़ा ऑस्टेरिटी या तप स्पीच के लिए है ही नहीं. भगवान के टू अंडरस्टैंड स्टडी स्क्रिप्चर्स एंड स्पीक, दैट इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल द टंग. एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए और वो कहे स्वामी जी हमारे गुरु महाराज वो बोलते नहीं, उन्होंने मौन व्रत लिया है. तो प्रभुपाद का अच्छी बात है, मैं बहुत बोलता हूं, उनको लेके आओ, मैं उनको गीता के बारे में सुनाऊंगा. तो प्रभुपाद देखते हैं कई बार अगर आपके पास कुछ सही चीज बोलने के लिए नहीं है तो चुप रहना अच्छा है. बेटर टू बी साइलेंट देन टू कीप स्पीकिंग नॉनसेंस. फिर ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपो मानसमुच्यते. सैटिस्फैक्शन सिंप्लिसिटी ग्रेविटी सेल्फ कंट्रोल प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस आर द ऑस्टेरिटीज ऑफ द माइंड. सबसे पहले सैटिस्फैक्शन, मन प्रसाद, कि जब तक कि हमारा मन संतुष्टि के स्तर पर नहीं आता, केवल ये चाहिए वो चाहिए हर समय, हैंकरिंग लैमेंटिंग, हैंकरिंग लैमेंटिंग। अगर उसी के अंदर ये मन हर समय व्यस्त रहेगा तो मन कभी वो स्थिर नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। तो ये है तीन प्रकार की ऑस्टेरिटीज जो गीता में भगवान ने बताए। अब ये करने के पश्चात हमको क्या प्राप्त होता है? तो कोई व्यक्ति पूछेगा कि ठीक है, वैराग्य, सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन, डिस्कम्फर्ट से मिलेगा क्या? रेनन्सिएशन विल गिव प्यूरिफिकेशन। वैराग्य पालन करने से शुद्धिकरण हमारे जीवन का, बाहर से अंदर से। जब हम दूसरों के लिए कुछ बलिदान करते हैं, त्याग करते हैं, तो कौन सा गुण हासिल कर रहे हैं? सेल्फलेसनेस, जो कि सबसे रेयर है इस कलयुग में, निस्वार्थ भाव। डिसिप्लिन से क्या हासिल होता है हमारे जीवन में? संतुलन। वी लर्न द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। और डिस्कम्फर्ट अगर हमारे जीवन में रहे, जो कि आवश्यक है, उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हाउ विल बी एम्पावर्ड? विथ लिटिल डिस्कम्फर्ट विल ऑलवेज बी अलर्ट एंड एक्टिव। With always comfort all around us, we'll be lethargic and lazy. जैसे होता है कई बार हम यहां पर प्रवचन के लिए बैठे हैं, पंखा चल रहा है, कुर्सी भी आरामदायक है और हाथ रखने के लिए वो सपोर्ट भी है, तो धीरे धीरे फिर उस कंफर्ट में लेथार्जी, नींद आना शुरू हो जाता। परंतु मान लो कि आपको यदि ये कह दिया जाए कि आपकी कुर्सी का जो तीसरा पैर है वो कभी भी टूट सकता है, थोड़ा भी आप हिलोगे तो वो टूट सकता है, आप नीचे गिर सकते हो, फिर आप सतर्क रहोगे, मैं गिरूं नहीं, सबके सामने फ्लॉप शो नहीं हो जाए कुछ ऐसा, तो इसलिए सतर्क रहो। तो डिस्कम्फर्ट ऑटोमेटिकली गिव्स अलर्टनेस। तो ये चार एम्पावरमेंट्स हैं हमारे शास्त्रों के आधार पर, कि जो हमने तप की व्याख्या की, चार अर्थ, ये चार अर्थ से हमको प्राप्त क्या होगा ये भी बताया गया शास्त्रों, कि ऐसे नहीं कि बस ना कि पैकेज के अंदर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, ऐसे ही पैकेज दे रहे हैं भगवान, नहीं। अब भगवान ने आज के श्लोक में कहा है ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या की है कि ज्ञान और विज्ञान का अर्थ क्या है। तो प्रभुपाद ने कहा है ज्ञान का अर्थ, भगवान कह रहे हैं, शरीर आत्मा में जो अंतर है उसे समझना, उसको ज्ञान बोलते हैं। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने देहात्म बुद्धि, शरीर और आत्मा, इनके 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 अंदर जो अंतर है वो जान लेना, उसको कहते हैं ज्ञान। और विज्ञान श्रील प्रभुपाद कहते हैं आत्मा को पहचानने के बाद कि आत्मा शरीर से अलग है, कि वो है क्या फिर भगवान का अंश है या भगवान से उसका संबंध है, इसको कहते हैं विज्ञान। तो केवल एक चीज से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते या काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं कि काम वासना ये दोनों को नाश करता है, क्योंकि काम वासना के वजह से व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है और शरीर मानने के वजह से भगवान से संबंध तोड़ता है। तो इसका विपरीत, यदि भगवान के प्रति प्रेम आ जाए तो वो शरीर से भी अलग अपने आप को मानेगा, आत्मा मानेगा, और फिर वो आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, वो संबंध उसका प्रस्थापित होता है। अब ये भगवान ने आज के श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है जो 21वीं सदी में कलयुग में इस भौतिक संसार में हमें समझना आवश्यक है। भगवान ने पापमानम ये जो शब्द कहा है काम वासना के विषय में, तो श्रील प्रभुपाद ने इसका डायरेक्ट अनुवाद किया है सिंबल ऑफ सिन, पाप का प्रतीक, चिन्ह। सिंबल को क्या कहते हैं? चिन्ह या प्रतीक। अब देखिए क्यों हमने इसके अलग से स्लाइड ली है या अलग से ये पॉइंट डिस्कस करने के लिए लिया है, ये इसलिए क्योंकि वैदिक दृष्टिकोण और जो आधुनिक दृष्टिकोण है इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर यहां पर भगवान बता रहे हैं उस एक वर्ड को यूज कर पापमानम, सिंबल ऑफ सिन। कि वैदिक व्यू क्या है, लस्ट इज सिंबल ऑफ सिन, और आजकल मॉडर्न व्यू क्या है लस्ट के कनेक्शन में, इट इज ग्लैमराइज्ड, लस्ट इज ग्लैमराइज्ड। ग्लैमराइज्ड का अर्थ है कि उसको एक सफलता या प्रगति का चिन्ह माना गया है, कि यदि, और विशेष रूप से हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि जो आजकल मीडिया के द्वारा ये जो काम वासना का इतना प्रचार हो रहा है, ये सब हॉलीवुड बॉलीवुड के द्वारा, तो लोग जब इनको देखते हैं तो इनको देखकर उनके मन में क्या विचार आ रहा है कि एक हीरो या एक हीरोइन जिसके इतने चक्कर चल रहे हैं, इतने लफड़े चल रहे हैं, वो सिनेमा में भी चल रहे हैं, सिनेमा के बाहर भी चल रहे हैं, और उनके लिए अलग से किताबें छापी जा रही हैं, ये सब स्टारडस्ट, सिनेब्लेड्स, ये सारी जो किताबें हैं क्या मैगजीन्स, कि इनके अंदर बताया कि हाँ इसने इसके साथ अपनी काम वासना ऐसे पूरी की, उसने उसके साथ अपनी काम वासना ऐसे पूरी की, इस सिनेमा में हो क्या रहा है। तो यही है कि मीडिया आजकल जो कि भगवान ने सिंबल सिन बताया है, मीडिया उसको ग्लैमराइज कर दिखा रही है कि यदि तुम्हारे जीवन में इनकी तरह काम वासना की एक्टिविटीज नहीं है तो तुम असफल हो। तो प्रश्न है कि क्या हम इनको रोल मॉडल बनाना चाहेंगे, जो खुलेआम इस संसार के जितने पाप हैं उनको खुलेआम प्रदर्शित कर रहे हैं, नशा हो, व्यभिचार हो, मांसाहार हो, सब चीज को खुलेआम, और इनको हीरो बनाया गया है आजकल। हीरो का अर्थ कौन है, हीरो का अर्थ क्या है, कि ये लोग हमारे रोल मॉडल हैं, इनकी तस्वीरें, पैसे दे देकर इनको जाकर हम देखें कि ये कैसे अपनी काम वासना को ग्लैमराइज कर दिखा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा था कि हाल ही में मैं जब बंबई गया था तो वहां पर एक परिवार मुझसे इसी विषय में प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि आप अध्यात्म के विषय में इतना प्रश्न पूछ रहे हो कि भगवान है कि नहीं, भगवान पर क्यों विश्वास रखना चाहिए, ये वो इत्यादि। मैंने कहा कि कभी आपने आपके जो बच्चे उनको आप क्या संस्कार दे रहे हो, क्योंकि वो परिवार में उनके बच्चे वगैरह सब आए हुए थे, तो उनके बच्चे सीधा आके कहे कि हमको ये सब चीजों में कोई विश्वास नहीं है, हमको, क्योंकि इसके अंदर हमको कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा किस में आपको रिजल्ट दिखता है, उन्होंने सीधा कहा एंटरटेनमेंट में रिजल्ट दिखता है, आपके ये प्रवचन में कोई रिजल्ट नहीं, हमको एंटरटेनमेंट में रिजल्ट दिखता है, कि आपके एक घंटे के प्रवचन में यदि मैं आऊं या और एक घंटे का मैं टीवी देखूं तो मुझे उधर मनोरंजन मिल रहा है, आपके इसमें बोर होते हैं। तो मैंने उनके माँ बाप को पूछा कि आप भगवान के विषय में जो इतना प्रश्न पूछ रहे हो, आपके बच्चे ये जो देख रहे हैं, आपके बच्चे ये सब जो देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है। कि आप आपके बच्चों को कभी ये बोलोगे कि बेटे या बेटी तुम्हारे रोल मॉडल ये होने चाहिए तुम्हारे जीवन में? ये जो स्त्रियां सिगरेट पी रही हैं, मैंने उनको पूछा इनको बहू बनाना चाहोगे? खाली दिखने में अच्छी हैं, हाथ में क्या है? मैंने उनको डायरेक्टली पूछा क्या इनको आप अपनी बहू बनाना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, बहू नहीं। क्या ऊपर जो दिख रहे हैं अपनी बेटी उनके हाथ सौंपना चाहोगे? नहीं। लेकिन घर में मेरे बेटे मेरी बेटी और सारे परिवार के साथ देखेंगे जरूर इनको, देखेंगे जरूर इनको, लेकिन नहीं नहीं हमारे जीवन में इनको कमिट नहीं करेंगे, ये तो मनोरंजन है। और मनोरंजन के नाम पर चल क्या रहा है? आपको क्या लगता है कि ये लोग मनोरंजन के नाम पर हमको कोई बहुत दिव्य शिक्षाएं दे रहे हैं? मैंने उनको पूछा कौन सी दिव्य शिक्षाएं आपको मिल रही हैं इनसे कि आप इतना टाइम दे रहे हो, इतने पैसे इसके अंदर डाल डाल कर आप इतना खर्चा कर रहे हो, इसके लिए कौन सी शिक्षाएं आपको मिल रही है, कौन सा आपका जीवन इन्होंने सुधारा है? और मैंने कहा इसके विपरीत आज का न्यूज़पेपर लाओ, उसी दिन का न्यूज़पेपर, जो हम लोग तो न्यूज़पेपर कभी खोलते भी नहीं, मैंने ऐसे ही रैंडमली मंगाया और न्यूज़पेपर में मैंने कहा कि पढ़ो एक एक पेज में कितने बलात्कार के केसेस हैं। तो उस दिन के न्यूज़पेपर में मैं तो ये भी अपेक्षा नहीं कर रहा था, मुझे तो लगा कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, पता नहीं है कि नहीं कोई केस आया है तो नहीं, तो मुझे उस बात का थोड़ा डर था। लेकिन उस दिन के न्यूज़पेपर में उन्होंने केवल चार पन्ने पलटे और चार पन्नों में सात बलात्कार के केसेस अलग अलग भारत में अलग अलग जगहों। तो मैंने पूछा कि ये जो बलात्कार कर रहे हैं ये लोग क्या गीता पढ़ने के बाद जा रहे हैं बलात्कार करने? ये सब इनको देख के जा रहे हैं और क्या? जो ये सिनेमा में अदनंगा नाच कर रहे हैं लोग जानबूझकर, इसलिए वो एक कार्टून दिखाया था कि एक बॉलीवुड की अभिनेत्री वो भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रही है, इन्हीं के बिरादरी की, तो भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रही कि हे कृष्ण मुझे दुष्ट दुशासन से बचाओ, ये मुझे कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये है 21वीं सदी की अभिनेत्री की प्रार्थना भगवान कृष्ण के लिए कि मुझे दुष्ट दुशासन से बचाओ, वो मुझे कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा था जब गांधी जी ने कहा आजादी के बाद भारत में कोई नंगा भूखा नहीं रहेगा, जानबूझ के मैंने पॉज किया, यही हो रहा है कि जितने अंग प्रदर्शन कर रहे हैं वो आलीशान जीवन जी रहे हैं। और इसको हम ग्लैमराइज कर रहे हैं। तो यहां पर भगवान ने जो एक शब्द आज कहा है पापमानम, इट इज सिंबल ऑफ सिन। अगर केवल हम इतना समझ लें कि काम वासना एक चिन्ह है, प्रतीक है पाप का, ना कि ये जो आजकल का जो ऐशो आराम का आलीशान जीवन है उसका। अब इसके विपरीत, अब देखिए स्कूलों में और जो भी सब जगह पर विद्यार्थियों में, बाहर स्कूल कॉलेज में, ये सब कुछ चर्चाएं क्या होती, आप एक टिपिकल कॉलेज तो छोड़ दीजिए, आजकल स्कूल को लीजिए, आप स्कूल के बच्चे स्कूल छूटने के बाद वो किसकी चर्चा करते हैं आपको लगता है? मैं अगर आपको पूछूं कि स्कूल छूटने के बाद कितने बच्चे हैं जो महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी या महाराणा प्रताप या इनकी चर्चा करते होंगे, या फिर अरे उसकी पिक्चर देखी क्या नई शाहरुख खान की, या जो भी इनके तो नाम भी नहीं पता मुझे, इनकी इनकी पिक्चरें देखी क्या। तो मैं एक व्यक्ति को पूछ रहा था कि मुझे बताओ कि ये शख्स एक सिनेमा में किसी एक स्त्री के साथ रहता है, दूसरे सिनेमा में किसी दूसरे स्त्री के साथ रहता है, तो आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं, और फिर इसकी घर की पत्नी भी अलग से, तो ये पूरे परिवार के साथ बैठकर अपनी जब पिक्चरें, खुद की पिक्चरें देखता होगा तो उसके बच्चे और उसकी पत्नी क्या देख रहे हैं। हमारे पापा देखो क्या गुल खिला रहे हैं, और ये इनकी हिट पिक्चर है, इस हिट पिक्चर में ये तीन तीन औरतों के साथ सोए हैं, ये गुल खिलाए पापा ने, और पत्नी वो क्या देख रही, भाई किससे शादी की थी। लेकिन नहीं, उनका जब इंटरव्यू होता है, पूरे परिवार का इंटरव्यू होता है, हमको फक्र है हमारे पापा पर, हमको फक्र है मेरे पति के ऊपर, और क्या ये सब चीजों पे फक्र है। तो मैं कह रहा था कि फक्र नहीं फिक्र होनी चाहिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आपको लग रहा होगा कि अरे एक तीन घंटे की पिक्चर देख ली तो क्या होता है। यहां पर जो कहा गया है, इफ अ 30-second एडवर्टाइजमेंट कैन सेल अ बॉटल ऑफ शैंपू, डोंट यू थिंक अ 3-hour मूवी कैन सेल यू अ लाइफस्टाइल। कि व्यक्ति मार्केट में एक शैंपू खरीदने जाता है कि 30 सेकेंड का एक कमर्शियल देखकर कि हाँ मैंने वो देखा था, तो सोचो 3 घंटा बैठकर पैसे खर्चा कर वो अगर वो एक टक होकर जो देख रहा है तो उसमें क्या लाइफस्टाइल उसको दिखाई जा रही है। उसको ये लाइफस्टाइल नहीं दिखाई जा रही कि कैसे तुम दिव्य तप करो, कैसे तुम वैराग्य, कैसे तुम डिसिप्लिन, नहीं, जो लाइफस्टाइल दिखाई जा रही है वो लाइफस्टाइल फिर वो अपने जीवन में और फिर पेपरों में पढ़ो, यही हो रहा है सब जगह। तो अब यदि हम इनको देखें, जो वो स्लाइड दिखाई थी, अब ये स्लाइड देखो कि कितने बच्चे इन को अपना हीरो माने हैं। छत्रपति शिवाजी, क्यों हमने इनका उदाहरण लिया, क्योंकि एक तो हम महाराष्ट्र में हैं तो उपयुक्त तो उदाहरण है छत्रपति शिवाजी का। कि छत्रपति शिवाजी, इनके जीवन की घटना, वो मुसलमानों से युद्ध करते हुए कल्याण, जो अभी अपना कल्याण एरिया मुंबई का, उस एरिया में उन्होंने उस प्रांत को जीता, वहां पर मुगल साम्राज्य था उसको जीता। तो उस समय की एक प्रथा थी कि जब भी कोई राजा दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करता तो उसको नजराना मिलता, नजराना। छत्रपति शिवाजी के समय यह शब्द इस्तेमाल किया, नजराना। तो नजराना क्या होता कि उस राजा जिसके ऊपर विजय प्राप्त की है, तो जो पराजित राजा है, उस पराजित राजा के राज्य की सबसे सुंदर जो स्त्री है वो नजराने के रूप में मिलेगी। तो जब छत्रपति शिवाजी ने उस कल्याण प्रांत के मुगल राजा के ऊपर विजय प्राप्त की, तो उस मुगल राजा की जो बहू थी, जो सबसे सुंदर दिखने वाली, वो नजराने के रूप में इनके सूबेदार लेकर आए। छत्रपति शिवाजी इतना क्रोधित हुए, उन्होंने अपने सूबेदार को कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, यहां पर हम धर्म की स्थापना करने के लिए विजय प्राप्त किए हैं, ये कुकर्म करने के लिए नहीं। और वो जो मुसलमान राजा की बहू को जब लाया गया शिवाजी महाराज के सामने, तो शिवाजी महाराज ने उसको देखते हुए कहा, उसको पहले तो नमस्कार किया, नमस्कार करकर प्रणाम करकर कहा कि यदि मेरी माँ आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी ऐसा सुंदर बेटा आपके गर्भ से पैदा होता। ये हैं हमारे हीरो। और उस बहू ने, वो मुसलमान बहू, उसने कहा, उसके ये शब्द अभी भी रिकॉर्डेड है हिस्ट्री बुक्स में, शिवाजी महाराज के विषय में कहती हैं वो, या अल्लाह यह इंसान नहीं ये एक फरिश्ता है, ये इंसान नहीं ये फरिश्ता है, और मेरी एक ही प्रार्थना है कि हे अल्लाह इसके ऊपर कामयाबी बहाल कर। ये अभी भी हिस्ट्री बुक्स में उसका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। तो ये है हमारे हीरो तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज को भी टेस्ट करने के लिए एक वैश्या को भेजा गया था। तुकाराम महाराज उस वैश्या के सामने उसको प्रीचिंग करने लगे। तुकाराम महाराज को पता भी नहीं था कि ये वैश्या है और क्यों आई है मेरे पास। वो तो इतने सिंपल, इतने सरल, इतने शुद्ध तुकाराम महाराज। तो जब वैश्या को भेजा गया तो तुकाराम महाराज उस वैश्या को सब कुछ देने लगे, प्रचार करने लगे। तो तुकाराम महाराज की जो पत्नी, उनको समझ में आया, उनको पता था कि ये कौन है। तो वो अपने पति को आकर डांटने लगी कि अरे सबके सामने जो तुम्हारी इमेज बनी हुई है ये पतन कराने आई है तुम्हारा। तब तुकाराम महाराज आश्चर्यचकित हो गए और तुकाराम महाराज ने फिर उसको कहा कि हम विष्णु के भक्त हैं, हम इन फंदों में नहीं पड़ते, तो आप गलत जगह पर आए हो। नम्रता से तुकाराम महाराज ने उसको कहा कि आप गलत जगह पर आए हो, हम विष्णु के भक्त हैं, हम इन फंदों में नहीं पड़ते। तो वो तुकाराम महाराज की शुद्धता और सिंप्लिसिटी, सरलता देखकर वो भक्त बन गई। और यहां पर अर्जुन का उदाहरण कि अर्जुन जो उर्वशी से प्रलोभित नहीं हुए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी वैदिक संस्कृति हमें ये हीरो दे रहे हैं, इनको हमें हीरो बनाना चाहिए, और हमारे जो बेटे बेटियां हैं उनको इनका संस्कार देना चाहिए कि हमारे रोल मॉडल हमारे परिवारों में, हमारे समाज में ये रोल मॉडल होने चाहिए, जैसे कि शिवाजी महाराज, तुकाराम, अर्जुन इत्यादि, जिन्होंने इंद्रिय निग्रह दिखाया, न कि वो जो सिगरेट पीते हुए पता नहीं कितनों के साथ सोए हैं। वो हीरो नहीं होने चाहिए हमारे, हमारे हीरो ये होने चाहिए। क्यों ये लोग हीरो हैं? क्योंकि इन्होंने इंद्रिय निग्रह दिखाया। तो वो भगवान बता रहे हैं कि ये जो काम वासना है, ये भगवान जानते थे कि कलयुग में 21वीं सदी में इस काम वासना को ग्लैमराइज किया जाएगा, इसलिए भगवान ने ये जो पापमानम शब्द इस्तेमाल किया, इट इज नॉट टू बी ग्लैमराइज, इट इज अ सिंबल ऑफ सिन, दैट इज व्हाट वी शुड नो। तो इसलिए फिर से हम ये श्लोक हमारे कानों में गूंजता हुआ छोड़ना चाहते हैं, जिसमें ऋषभ देव ने कहा है कि ये जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये गधे सुअर कुत्तों की तरह कष्ट करने के लिए नहीं है, जो कि बिना कष्ट किए उनको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यहां पर ऋषभ देव कह रहे हैं विड भुजाम ये, कि एक सुअर जो है वो बिना कष्ट किए उसको जो उसका जो सबसे अच्छा लगता है उसको प्राप्त हो रहा है विष्ठा, तो फिर तुम क्यों इतना कष्ट कर रहे हो और उसके बावजूद कुछ मिल नहीं रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मनुष्यों के लिए सर्वप्रथम दिव्य तप, और वो दिव्य तप उसे शुद्धता, ब्रह्म सुख और अनंत काल तक ये प्राप्त करा कर देगा। तो ये है जो श्रील प्रभुपाद ने कहा, टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। और आज के श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं, नियम य भरतर्षभ प्रजही येनम, कि अर्जुन और हम सबको टेम्पररीली गो थ्रू द डिस्कम्फर्ट ऑफ सेइंग नो टू लस्ट। व्हाई? because you will get permanent convenience at the end. और ये है आज के श्लोक की संपूर्ण शिक्षा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. अब अगले श्लोक में भगवान वह बुद्धि से भी परे है. आपका प्रश्न ये उठ रहा होगा, कौन है भाई बुद्धि से भी परे? यदि आपको जानना है तो अगले बुधवार इसी समय इसी स्थान पर मौजूद रही. जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की, निताई गौर प्रेमानंदी.